नमस्कार भारत, आज 11 नवंबर दिन शनिवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। जीएसटी की ऊंची दर को लेकर आलोचना का सामना कर रही सरकार ने 125 उत्पादों की दर घटाई।
ये चुनाव की वजह से ये सब किया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के हाथ से एक अच्छा चुनावी मुद्दा भी खींच लिया है।
गुजरात चुनाव में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का कितना रहेगा असर और माता पिता क्या सोचते हैं उनके बारे में, रेहान फजल की विवेचना में सुनिएगा गुजरे जमाने के मशहूर क्रिकेटर नवाब पटौदी की कहानी, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने जीतना सीखा था।
सबसे कम उम्र में तो कप्तानी मिली, लेकिन हम टीम में भी सबसे कम उम्र के थे, तो कोई आसान बात तो नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई थी बाय डिफॉल्ट।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। लेबनान के चरमपंथी शिया संगठन हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने कुछ दिन पहले सऊदी अरब की यात्रा में ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। टेलीविजन प्रसारण में नसरल्ला ने दावा किया कि हरीरी को सऊदी अरब में बंधक बना लिया गया है और वापस लौटने से रोका जा रहा है। उधर अमेरिका ने उन देशों को चेतावनी दी है जो अपने झगड़े के लिए लेबनान को बीच में घसीट रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने कहा है कि लेबनान संकट के भयानक परिणाम हो सकते हैं और मामले को शांत करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं।
This is a matter of great concern to us. And what we want...
यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और हम जानते हैं कि लेबनान में शांति बरकरार रहे। ये जरूरी है कि इस क्षेत्र में कोई नया विवाद न पैदा हो। इसके लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेबनान की एकता और स्थिरता को बनाए रखना जरूरी है ताकि देश की संवैधानिक संस्थाएं चलती रहें। ये थे एंटोनियो गुटरेश के शब्द। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि वो देश में एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आवामी इत्तेहाद के बैनर तले 23 धार्मिक, क्षेत्रीय और अन्य दल गठबंधन करेंगे। जनरल मुशर्रफ फिलहाल पाकिस्तान में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और स्वतः निर्वासन का जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द पाकिस्तान लौटने की योजना बना रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नवाज शरीफ के पद से हटने के बाद मुशर्रफ इसका राजनीतिक फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाले एक समूह ने चेतावनी दी है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में भेदभाव को खत्म करने होने में 100 साल का समय लग सकता है। फॉसेट सोसाइटी का कहना है कि चाहे नौजवान हों या उम्रदराज, महिलाओं का वेतन पुरुषों के मुकाबले कमतर बना हुआ है। फॉसेट सोसाइटी में पॉलिसी एंड इनसाइट के प्रमुख जेमिया ओलचास्की ने कहा है कि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इस ओर हमारा कदम रुक जाएगा।
It does vary according to which job you're in, which region you're in, but also for different women. So the gap gets much wider.
पेशे और क्षेत्र के लिहाज से वेतन अलग अलग हो सकता है, लेकिन महिलाओं के मामले में भी ऐसा ही भेद है। ये खाई और चौड़ी होती जा रही है। अपने पांचवें दशक में चल रही महिलाओं के लिए तो ये फर्क 25% तक है। कम उम्र की महिलाओं के लिए फर्क थोड़ा कम है, लेकिन कुल युवा महिलाओं के मामले में ये फर्क बढ़ रहा है। इसलिए आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। ये थे जेमिया ओलचास्की के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन पर तुर्की के मौलवी फतलुल्लाह गुलेन पर जबरदस्ती करने के मामले में जांच बैठा दी गई है। आरोप है कि गुलेन को गैरकानूनी तरीके से पकड़कर तुर्की भेजने की योजना में फ्लिन शामिल थे। तुर्की का आरोप है कि पिछले साल देश में हुए तख्तापलट की असफल कोशिश के पीछे अमरीका में रह रहे गुलेन का हाथ है। अमरीकी कॉमेडियन लुइस सीके ने कहा है कि जिन पांच महिलाओं ने उन पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं उन सभी मामलों में सच्चाई है। उन्होंने महिलाओं के सामने अश्लील हरकत करने की बात स्वीकार की और इस पर खेद प्रकट किया। सीनेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार के चुनाव के लिए काम करने वाले एक ग्रुप ने पार्टी के अलाबामा उम्मीदवार रोय मूर के लिए चंदा इकट्ठा करने से मना कर दिया है। मूर पर 1970 के दशक में एक बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब से लागू हुआ है तब से उसकी ऊंची दरों को लेकर आलोचना के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। कारोबारियों और आम लोगों के विरोध के बाद सरकार ने कुछ छिटपुट चीजों की दरों में संशोधन भी किया लेकिन इसे नाकाफी माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद करीब 125 उत्पादों पर लगने वाली 28% की जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया है और कुछ अन्य वस्तुओं की जीएसटी दर भी संशोधित की गई है। क्या सरकार का यह कदम किसी सियासी मजबूरी का परिणाम है या फिर जनता को हो रही परेशानियों को देखकर सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ है? सुनते हैं मानसी दास की रिपोर्ट।
कुछ ऐसे आइटम्स हैं, मैं कैटेगरीज बतला देता हूं। एक तो जो सेस आइटम्स हैं जिसमें लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स आते हैं, वाइट गुड्स आते हैं, और कुछ अन्य गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स के हैं, एयरक्राफ्ट्स के हैं, यॉट्स के हैं।
गुवाहाटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कई वस्तुओं के ऊपर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 28% से 18% तक कर दिया है। रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले रेस्टोरेंट को ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता था लेकिन रेस्टोरेंट वालों ने इसका लाभ अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया, इस कारण अब उन्हें टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हर तरह के रेस्टोरेंट में सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा।
एंड नो ITC बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू एनी रेस्टोरेंट सिंस दे डिड नॉट पास ऑन द बर्डन बेनिफिट टू द कंज्यूमर, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देमसेल्व्स। और स्वाभाविक है इसलिए कि जो भी कस्टमर रेस्टोरेंट में जाएगा अब उसको 18 की बजाय 5% देना पड़ेगा।
लागू होने के 4 महीनों के बाद ही जीएसटी की दरों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसी साल मार्च के आखिर में जीएसटी बिल लोकसभा में पास हुआ था जिसके बाद जुलाई 1 को इसे लागू कर दिया गया था। देश के कई हिस्सों में कारोबारियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में भी कई जगहों पर इसका कड़ा विरोध किया गया। विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं थीं। हाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बैनर्जी ने इसे ग्रेट सेल्फिश टैक्स कहा तो राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था।
ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है, छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और तब भी ये सुनना नहीं चाहते।
कल टैक्स की दरों में कमी करने के जीएसटी काउंसिल के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें खुशी है कि जनता की इच्छा और कांग्रेस के विरोध ने सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जीएसटी की दरों में बदलाव को एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट कहते हैं,
गुजरात में अभी एक माहौल नाराजगी का फिर भी है कि ये चुनाव की वजह से ये सब किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के हाथ से एक अच्छा चुनावी मुद्दा भी खींच लिया है।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास,
बीबीसी इंडिया बोल।
गुजरात विधानसभा चुनाव पर जीएसटी और नोटबंदी का कितना असर पड़ेगा? क्या व्यापारियों, पटेलों और दलितों की नाराजगी का राजनीतिक फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। आप भी अपनी राय जाहिर कीजिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
चुनावी मौसम में खूब चर्चा हो रही है नौजवान नेता हार्दिक पटेल की। हार्दिक ने भाजपा के पारंपरिक वोटर माने जाने वाले पाटीदार समुदाय के नौजवानों को अपने संगठन यानी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर तले लाकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने अहमदाबाद में हार्दिक के माता पिता और पड़ोसियों से उनके बारे में बात की और जानकारों के नज़रिए से भी पाटीदार आंदोलन के उभार को समझने की कोशिश की। सुनिए ये बातचीत।
अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर हम वीरमगाम में हैं जहां हार्दिक पटेल का पैतृक घर है और इस वक्त मैं उनके माता पिता के साथ हूं, भरत भाई पटेल और उषाबेन पटेल। और हार्दिक पटेल की एक तस्वीर, एक शील्ड यहां पर है जिस पे हार्दिक पटेल की तस्वीर है और उससे ऊपर सरदार पटेल की तस्वीर है। आपका बेटा राजनीति में चला गया है, जिसे आप मान नहीं रहे हैं कि वो राजनीति है। पाटीदार समाज भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर रहा है गुजरात में, लेकिन इस बार वो भाजपा से नाराज़ बताया जा रहा है, क्या वजह है नाराज़गी?
14 बच्चा मार दिया है, हमारी बेटी और बच्चे को मारा है, छोटे छोटे बच्चे को मारा है, झूले में झूलते थे तो वो पुलिस वाले ने घर पे जाके मारा है, इसलिए हम भाजपा के खिलाफ है।
उषा बेन जी भी, उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। आप क्या हमें बचपन का कोई हार्दिक पटेल का कोई किस्सा बता सकती हैं, जिसमें ऐसा लगता हो कि उसमें एक लीडरशिप वाली, नेता बनने वाली या लोगों को लीड करने वाली, एक आंदोलन चलाने वाली क्षमता है?
જો હાર્દિક નાનો બાળપણ માં એને લીડર બનવાનો શોખ હતો જ ને કાયમ, જ્યારે ભણતો
એકો એસપીજી કા પ્રમુખ થા ઓર 2.5 સાલ પ્રમુખ રહા,
એસપીજી યાની સરદાર પટેલ ગ્રુપ જો થા, જી
સરદાર પટેલ ગ્રુપ કા પ્રમુખ થા ઓર 2.5 સાલ યહાં પ્રમુખ રહા ઓર ઇસને 2-3-4 સભાયું કી હે ઓર બ્લડ ડોનેશન કા ભી કામ ભી રખતા થા ઓર સેવાઈ કા કામ કરતા થા।
अब हम हार्दिक पटेल के घर से थोड़ी दूर पर आ गए हैं और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो हार्दिक पटेल के बारे में क्या सोचते हैं।
हार्दिक पटेल बहुत बोगस आदमी है, विकास सिर्फ उसका हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है।
टीवी वाले, न्यूज वाले इसको हवा भर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है।
वो मेरी जात का नहीं है, नहीं मेरी कास्ट का है, लेकिन संविधान में भी उसका हक मांगने का अधिकार है।
इस वक्त मेरे साथ हैं गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा। सर, आपसे पहला सवाल यही कि हार्दिक पटेल का उभार इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है?
बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से पाटीदार समुदाय निकल के आया है बाहर, ये अलग बात है कि उनको इस जगह पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी की, गुजरात की लीडरशिप का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़ा उसमें भाग रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में एक जो यूथ हैं वो पाटीदारों में बहुत उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ उनका कई बार आमना सामना हुआ है, और जब भी हुआ है तब गुजरात की सरकार और उसकी ताकत ने उनसे मात खाई है।
तो ये राजनीति में कितनी लंबी दूरी के घोड़े साबित हो सकते हैं?
देखिए, आप ये क्यों मान के चलते हैं कि हर आदमी जो किसी चीज़ को लेके चला है तो वो बड़ा भारी नेता बनना चाहता है? युवा वर्ग परेशान है, बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं लेकिन ज़मीनी प्रक्रिया कुछ भी नहीं हुई है, और वो डिसकंटेंटमेंट आगे लीडर को बढ़ाता है और वो उस चीज़ को आगे एक स्तर तक ले जाता है, उसके बाद वो लीडर्स कई बार खुद भी बिखर जाते हैं।
कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की सुर्खियां जानते हैं संदीप राय से। जी संदीप।
जी अमरीश, आज के लगभग सभी अखबारों में जीएसटी की दरों में हुई कटौती को पहले पेज की शीर्ष खबर बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में 28% के दायरे में आने वाले 288 सामानों की सूची से लगभग 178 आइटम को निकाल दिया गया है, और इस तरह से अब इस टैक्स स्लैब में केवल 50 आइटम बचे हुए हैं। हम आगे चलते हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान 5 जजों की पीठ ने एक दिन पहले दिए गए 2 जजों की पीठ के फैसले को उलट दिया। हंगामा तब खड़ा हुआ जब याचिकाकर्ता की ओर से जिरह कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस पर ही आरोप लगा दिया और इस सुनवाई से अलग हटने की उनसे मांग करने लगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य खबर है जिसमें कहा गया है कि गुजरात के सूरत में बीजेपी के एक एमएलए को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। असल में करंज के विधायक जनक बगदाना को पाटीदार अनामत आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने एक सोसाइटी में घर घर जाकर प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सूरत के पाटीदार बहुल इलाकों में बीजेपी नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनसत्ता की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सगे भतीजे की पत्नी को कानपुर देहात के झिंझक नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी से के लिए बीजेपी से टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने इस सीट पर एक अन्य महिला को खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल देने के लिए शर्त रख दी है। वो शर्त बहुत अजीब है, जिसमें विश्वविद्यालय ने कहा है कि जो छात्र आवेदन करेंगे उन्हें शाकाहारी और शराब न पीने वाला होना चाहिए। दिसंबर में ये दीक्षांत समारोह होने वाला है जिसमें ये मेडल दिए जाएंगे। द स्टेट्समैन की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन को आधार नंबर से जोड़े जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध में शनिवार को यानी कल आज 11 नवंबर को दिन में 11 बजे से आधे घंटे के लिए मोबाइल बंद करने का आह्वान किया है। इस मुहिम में से नो टू यूआईडी, रिथिंक आधार और आवाज़ जैसे संगठन शामिल हैं। द टेलीग्राफ की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान को लेकर आलोचना की है। भारत सरकार ने देश में स्वच्छता और स्वच्छ पानी की स्थिति की निगरानी के लिए लियो हेलर को बुलाया था।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए संदीप राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई की एक किताब प्रकाशित हुई है, डेमोक्रेसी इज द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी, जिसमें उन्होंने आज़ादी के बाद भारतीय क्रिकेट की कहानी को 11 महान खिलाड़ियों की जिंदगी के जरिए बयान किया है। राजदीप की इन 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में एक थे मंसूर अली खां पटौदी, जिन्होंने 60 के दशक में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों को एहसास कराया कि वो भी जीत सकते हैं। विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं नवाब पटौदी के क्रिकेट जीवन के विभिन्न पहलुओं पर।
1 मार्च 1962 को भारत की क्रिकेट टीम बारबाडोस के खिलाफ मैच खेल रही थी। उस समय दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ की एक बाउंसर भारतीय कप्तान नॉरी कॉन्ट्रैक्टर के सिर में लगी और वो वहीं पिच पर धराशायी हो गए। चोट इतनी जबरदस्त थी कि कॉन्ट्रैक्टर के नाक और कान से खून बहने लगा। टीम के मैनेजर गुलाम अहमद ने उप कप्तान पटौदी को सूचित किया कि अगले टेस्ट में वो भारतीय टीम के कप्तान होंगे। उस समय पटौदी की उम्र थी मात्र 21 साल और 70 दिन। पटौदी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
सबसे कम उम्र में तो कप्तानी मिली, लेकिन हम टीम में भी सबसे कम उम्र के थे, तो कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई थी बाय डिफॉल्ट, वो बेचारे नारी को लग गई थी चोट। जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई अपने क्रिकेट बोर्ड का कोई आइडिया तो नहीं था कि कप्तान बनेंगे। ये 2-3 साल मेरे ख्याल से सोच रहे थे कि अगर टीम में रह सकें तो 3-4 साल के बाद जब नारी कंट्रैक्ट रिटायर होगा तो इनको कप्तान बना लेंगे, ये आइडिया उनका था मेरे ख्याल से। लेकिन अब एकदम डाल दिया उन्होंने समंदर में, तो तैरना पड़ा था। अब तैरने की पूरी कोशिश करी, उसमें हमारे जो साथी थे उन्होंने काफी मदद करी, उनमें सर्टनली एक दो खिलाड़ी थे जिनको नागवार गुजरा होगा।
बिशन सिंह बेदी का मानना है कि भारतीय क्रिकेट में पटौदी हर किसी से कम 100 साल आगे थे। उनकी टीम के एक और सदस्य प्रसन्ना की नजर में पटौदी के मैदान में उतरने के ढंग से पता चल जाता था कि क्लास और लीडरशिप होती क्या है। डेमोक्रेसीज 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी के लेखक राजदीप सरदेसाई बताते हैं,
पटौदी जब कप्तान बने वो भी केवल 21 साल के थे, और तब ये भी किसी को मालूम नहीं था कि क्या पटौदी वाकई टेस्ट लेवल बैट्समैन बन पाएंगे, क्योंकि उनकी एक आंख चली गई थी। लेकिन उस मुसीबत से उन्होंने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को एक दशक के लिए संभाला और एक नेतृत्व दिया, जहां पहली बार इंडियन टीम के क्रिकेटर्स को लगा कि हम केवल बंबई के नहीं, मद्रास के नहीं, कलकत्ता के नहीं, दिल्ली के नहीं, लेकिन हम टीम इंडिया भारत के लिए खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। और दूसरी बड़ी बात थी कि वो खुद नवाब थे, लेकिन इसके बावजूद उनको धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि अगर मैं इंडियन टीम को एक तरह से एक नए दौर की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ तो मुझे एक तरह से आम आदमी की तरह उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो फील्डिंग पर जोर दिया, जो उन्होंने स्पिन बॉलिंग पर जोर दिया, और जिस तरह से वो अपने आप को फील्ड पर कैरी करते थे, जो उनका एक रुबाब था, उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि वो हम कह सकते 1960 का जो दशक है जहाँ भारत ज़्यादा मैचे नहीं जीती, लेकिन सबको पटौदी की यादें हैं।
पटौदी का टेस्ट करियर शुरू होने से पहले ही एक बड़ी कार दुर्घटना में उनकी दाहिनी आंख बुरी तरह से जख्मी हो गई थी।
तमाशा ये हुआ था कि ऑगस्ट बैंक हॉलिडे थी ब्राइटन में, और उस जमाने में पहली दफे अपने समंदर के किनारे वो एक डबल ड्यूअल कैरेज वे खुला हुआ था। लोग जो बाहर से आते थे ब्राइटन के, उनको आइडिया नहीं था कि डबल हो गया है। तो उसका भी बेचारे का क्या कसूर था, हमारा भी कसूर नहीं था। वो बिल्कुल सामने आ गया गाड़ी के हमारे, और हम लोग जा रहे थे वापस खाना वाना खा के अपने होटल, इसलिए कि पूरे दिन तो फील्डिंग करी थी और थके भी गए। तो अब वो विंड स्क्रीन से टकराई हुई हमारी आँख में, थोड़ी चोट आ गई। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, फिर एक आँख से खेलने में एडजस्ट करने में काफी मुश्किल हुई।
पटौदी की आँख की सर्जरी हुई लेकिन उनकी आँख ठीक नहीं हो सकी। जब उन्होंने कुछ दिन बाद क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो उन्हें अपनी तरफ दो गेंदें आती दिखाई देती थी, वो भी एक दूसरे से 6 इंच की दूरी पर। पटौदी ने अपनी आत्मकथा टाइगर्स टेल में लिखा,
जब मैं लाइटर से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता था तो मैं उसे करीब 1/4 इंच से मिस कर जाता था। जब मैं जग से गिलास में पानी डालने की कोशिश करता तो वो गिलास में न जाकर सीधे मेज पर गिर पड़ता था।
एक आंख से आपको फासला जज करना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर अच्छा स्पिनर थोड़ी बॉल को हवा दे रहा है या कभी चेंज ऑफ पेस हो रहा है तो उससे मुश्किल हो जाती थी, या बहुत फास्ट हो कोई, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि अगर कोई चेंज ऑफ पेस करे या कोई स्पिनर फ्लाइट करे तो पता नहीं चलता था एग्जैक्टली कहाँ बॉल टिप खा रही है, उसमें थोड़ी बहुत हमें कभी कभी गलती हो जाती थी।
पटौदी ने इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 203 नाबाद रन बनाए थे, लेकिन उनका खुद का मानना था कि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी 1967 में मेलबर्न की हरी पिच पर बनाए गए 75 रन। एक टेस्ट में सर्वाधिक कैच लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले यजुर्वेंद्र सिंह टाइगर पटौदी को बहुत नजदीक से जानते थे।
उस वक्त इंडिया बहुत अच्छा नहीं कर रही थी और उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी था, उसके पहले टेस्ट मैच में वो नहीं खेले, टीम बहुत बुरी रीत से हारी, इसीलिए टीम ने बोला कि आपका हैमस्ट्रिंग इंजरी है फिर भी आपको खेलना पड़ेगा, तो वो खेले कैप्टन नेचुरली जैसे, और वो गया और उनका नेचुरली उनको रनर नहीं मिला क्योंकि मैच के पहले वो इंजर्ड थे। एक पैर में और एक आंख से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मैकेंजी और उनको इतना जोर से मारा, कोई कमेंटेटर था उसने बोला ये ऑस्ट्रेलियन अटैक तो बहुत ऑर्डिनरी होगा कि एक जरा यहाँ है इंडिया का कैप्टन एक आंख और एक पैर से खेल के उनको इतना मार रहे हैं। ब्रैडमैन में भी बोला कि ऐसे हमने कभी देखा ही नहीं है।
पटौदी एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ बला के फील्डर भी थे। जब वो कवर पर खड़े होकर गेंद के पीछे कुलाचे भरते थे तो लगता था कि एक चीता अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, शायद इसी वजह से उनका नाम टाइगर पड़ा। राजदीप सरदेसाई पटौदी की फील्डिंग का एक अलग ढंग से विश्लेषण करते हैं।
अगर आप देखें कि जो पहले के प्रिंसेस थे, शायद रणजी को छोड़कर ज्यादातर कोई फील्डिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वो चाहते थे केवल बैट्समैन बने, बॉलर भी नहीं बने, क्योंकि उस जमाने में यह समझा जाता था कि राजा महाराजा बैटिंग करेंगे, बॉलिंग वो करेंगे जिसके पास मसल है, और फील्डिंग वो करेंगे जो आपके नौकर हैं वहाँ आपके उस महल में। पटौदी ने मुझसे ये कहा भी कि मैं जब एक आंख मेरी चली गई तो मैं जानता था कि मैं शायद उतना उस लेवल का बैट्समैन नहीं बन सकता जो मैं चाहता था, लेकिन मैं फील्डर ज़रूर अच्छा बन सकता हूँ। तो फील्डिंग पर जो उन्होंने मेहनत की उसके लिए तो उनको टाइगर कहा गया।
1968 में टाइगर पटौदी की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ शादी हुई। एक बार बीबीसी से बात करते हुए पटौदी ने शर्मिला के साथ अपनी शादी का किस्सा सुनाया था।
ये मुलाकात हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे बॉम्बे में, उनकी यहाँ पे हुई थी, हालांकि पहले भी एक दो दफे मुलाकात हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ अब 1965 की, तो आप यही समझ लीजिए कि हम लोग 1966 में ये तय कर लिया था कि शादी करेंगे और शादी फिर 68 में हुई।
दुनिया में शायद दो ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्हें अपनी कप्तानी के बल पर राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। एक तो थे इंग्लैंड के माइक ब्रियरली और दूसरे टाइगर पटौदी। पटौदी के भांजे और खुद प्रथम श्रेणी की क्रिकेट खेल चुके साद बिन जंग एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
उस वक्त
हम लोग दिल्ली में थे और मैं उनको मामू जान कहता हूँ, और मामू जान मरूम हमारे साथ थे, और हमारे घर के पीछे एक सीमेंट का चबूतरा था, तो वो जमाने में एक लाल बॉल हुआ करती थी प्लास्टिक की, तो मामू जान ने कहा कि देखो साथ मुझको तुम फेंको, जितनी तेज फेंक सकते हो फेंको, तो मैं फेंकता गया और मामू जान खेलते गए, तकरीबन 12-15 गज पे बैटिंग कर रहे थे एंड ही वाज बैटिंग ब्यूटीफुली, मगर जैसे ही मैंने उनको एक यॉकर पे की तो उनको बिल्कुल नहीं दिखी, तो मैंने दूसरी यॉकर पे की फिर नहीं दिखी, तो उन्होंने कहा फिर फेंको, फिर मैंने फेंका नहीं दिखी उनको, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो नहीं दिख रही, तो मैंने उनको बाउंसर मारी वो भी नहीं दिखी, तो फिर मैंने कहा मामू जान आप कैसे करने वाले हैं, तो उस वक्त उन्होंने राज सिंह से कहा था कि राज सुनो मुझे बैटिंग के लिए मत दो इसलिए कि मैं मुझे बॉल नहीं दिख रही मैं नहीं खेल सकूंगा, तो राज सिंह ने उस वक्त उससे कहा कि जिन्हें हमको आप बैटिंग के लिए मत आइए आप अपने कैप्टनसी के लिए आइए, इसलिए अगर ये हिंदुस्तान टीम के साथ हमको वेस्ट इंडीज को हराना है तो खाली आपके दिमाग के साथ और आपके कैरेक्टर के साथ हम हरा सकते हैं उनको, तो मामू जान जिनको गेंद नहीं दिख रही थी उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल के दो ऑल लाने का जो सीरीज था उन्होंने इतनी खूब कैप्टनसी की है, तो मेरे लिहाज से ये आदमी एक जीनियस था और उन्होंने जो घर दिखाया वो टाइम दैट वाज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस।
कम लोगों को पता है कि पटौदी को संगीत का बहुत शौक था, वो तबला बजाना भी जानते थे और अक्सर एक गाना गाया करते थे मेरा लाल दुपट्टा मलमल थी।
मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी घर उधर लहराए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी।
60 के दशक में पटौदी ने भारतीय क्रिकेट की बागडोर संभाली तो भारतीय क्रिकेट की स्थिति ऐसी ही थी जैसी कि आजकल जिम्बाब्वे की है। ये पटौदी का ही बूता था कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में पहली बार ये विश्वास जगाया कि वो भी जीत सकते हैं।
1965 तक हम बहुत कम क्रिकेट मैच जीते, लगता था कि जिस तरह से आज जिम्बाब्वे है उस तरह से हम केवल मैच खेल रहे, लेकिन जीतने का जो एक जुनून होता है वो टीम में नहीं था। पटौदी ने धीरे धीरे वो एक तरह से वो जगाया लोगों में कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं आप देश के लिए खेलते हैं, आप अपने स्वाभिमान को लेकर उसको आगे बढ़ाइए, इसीलिए मैं कहता हूँ वो एक तरह से एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने शुरू की।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
इस विवेचना के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर क्रिकेट के मैदान से। 8 नवंबर को भारत आई श्रीलंकाई टीम का मुकाबला भारत के साथ 16 नवंबर से शुरू होगा। भारत बनाम श्रीलंका का पहला मुकाबला टेस्ट मुकाबला होगा। जिस तरह से भारत का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा, श्रीलंका के लिए भारत को भारत में हराना एक बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती पर बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया।
जिस तरीके से भारतीय टीम पिछले कुछ समय में घर पे खेली है, चाहे कोई भी उनके खिलाफ खेला हो, तो बहुत दिक्कतें उनके लिए रही हैं, लेकिन एक अच्छी चीज जो होगी अपने आत्मविश्वास के लिए श्रीलंकाई टीम के लिए कि अभी उन्होंने जो पिछले 2 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान को उन्होंने हराया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस के लिए उनके बहुत बढ़िया चीज होगी, क्योंकि भारत से हारने के बाद और इस सीरीज के बीच में वो श्रृंखला थी, तो जल्दी से आप ये भी भूल की कोशिश करेंगे कि भारत के खिलाफ आपका किस तरीके का प्रदर्शन रहा था, और आप जब यहाँ टेस्ट मैच में कलकत्ता में उतरेंगे उस दिन आप इस सोच के साथ
UAE में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबलों में श्रीलंका ने टेस्ट मुकाबलों में जहां अपनी जीत दर्ज कराई, तो वहीं ODI मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। श्रीलंका बनाम भारत का पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। लेबनान के चरमपंथी शिया संगठन हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। नसरल्ला ने दावा किया कि लेबनान के प्रधानमंत्री हरीरी को सऊदी अरब में बंधक बना लिया गया है और वापस लौटने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि वो देश में एक नया राजनीतिक संगठन बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आवामी इत्तेहाद के बैनर तले 23 धार्मिक, क्षेत्रीय और अन्य दल गठबंधन करेंगे। महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाले एक समूह ने चेतावनी दी है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में भेदभाव को खत्म करने में 100 साल का समय लग सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन पर गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि गुलेन को आरोप है कि तुर्की के मौलवी गुलेन को गैरकानूनी तरीके से पकड़कर तुर्की भेजने की योजना में फ्लिन शामिल थे। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया नवीन नेगी ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।